आज शरण में आने की जरूरत क्या थी? क्योंकि रावण ने तो सीता का हरण कभी कर लिया था। जिस दिन रावण ने सीता का हरण किया उस दिन रावणी विभीषण इनसे नाराज होकर आता तो बात समझ में आती है। लेकिन ये क्या बात है? इसलिए महाराज मेरा तो ऐसा विचार है कि न रहे बांस और न बजे बांसुरी। ये पांच आज आए हैं, कल और कुछ कोल समझ के आ जाएंगे। हमारे बंदरों को आज्ञा दो और तत्काल जाकर इनको अभी यहां पूरा करके समुद्र में डुबा दे और अपना काम पूरा कर दे। विभीषण जी की बात सुनकर के राम जी महाराज मौन रहे, कुछ बोले नहीं। विभीषण जी की नहीं, सुग्रीव की बात सुनकर के कुछ बोले नहीं। राम जी महाराज मौन रहे। फिर राम जी महाराज ने हनुमान आदि सब बानरों से कहा, देखा बानर राज सुग्रीव कितने हमारे हित में सावधान है। राजनीति की दृष्टि से देखा जाए तो इससे ऊंचा विचार अपने को कहीं सुनने को नहीं मिलेगा। हमारे मित्रों पर कोई कष्ट न आ जाए इसलिए दूसरे के अंदर न होने वाले भी अवगुणों को देखना, ये मित्रता का लक्षण है। मित्र होता है वो समर्पित होता है, जिसके लिए समर्पित होता है उसी के लिए होता है। बहुत अच्छा ख्याल, अच्छा कहा है। ऐश्वर्य चाहने वाले अपने मित्र के लिए ऐसा कहना उचित भी है। परंतु कि महाराज परंतु क्या, परंतु की क्या बात है? आप लोग बताइए अपनी दृष्टि से कि क्या करना चाहिए। तो उन सब ने मिलकर के कहा कि महाराज किस समय क्या करना चाहिए, बात आपसे छिपी हुई नहीं है, क्योंकि आप संपूर्ण त्रिलोकी के अंदर भूत भविष्यत वर्तमान सब कुछ जानने वाले हैं। आप हमसे ऐसी बात कह करके आप अपनी श्रेष्ठता बता रहे हैं कि जिस कैसे देखो राम परीक्षकारी है, कैसे राम निभृतात्मा है, दूसरों पर अपने आप को रख देने वाले हैं, कैसे राम दृढ़ पराक्रमी है, अपने मित्रों की कितनी बात वे मानने वाले हैं। देखो किसी की बात मानना है ना, ये उसके चित्त को प्रसन्न करना, चित्त को प्रसन्न करना, सेवा करनी है उसकी। लेना देना कुछ नहीं, लेकिन चित्त की उसकी बात मान ले वे तो बस भाई, बात मानने से चित्त प्रसन्न होता है। तो आप ये हम लोगों को सिखाने के लिए बोलते हैं तो महाराज हम तो इसका निर्णय पूरा जानते नहीं है। आप श्रेष्ठ श्रेष्ठ सब बांदरों को बुलाकर एक एक से ये बात पूछिए कि क्या कौन क्या बोलता है, कौन क्या बोलता है। राम जी ने कहा बहुत अच्छी बात है, सबको बुलाओ। अंगद जी से पूछा, अंगद विभीषण के लिए क्या करना चाहिए? अंगद जी ने कहा कि देखिए यूं तो हमारे चाचा ने जो कही है बात बिल्कुल ठीक कही है महाराज। हम जिस शत्रु के ऊपर चढ़ाई करने जा रहे हैं उसी का छोटा भाई हमारी शरण में आने की बात बोलता है, ये तो बात बिल्कुल विश्वास के योग्य नहीं होती। ये मीठी मीठी बातों में हमको ऐसा फुसलाएंगे और भीतर में घात करेंगे, क्योंकि ये षटबुद्धि वाले किस समय में हमारी कहां पोल देख करके कहां हमारा नुकसान कर दे कुछ पता नहीं है, आगे जाकर कोई अनर्थ न हो जाए। महाराज अपने लोग प्रश्रवण पर्वत से चले थे तो क्या ये सोच के चले थे कि कोई लंका का आदमी हमारे अंदर आए मिले कुछ बताए, ऐसा सोच के नहीं चले थे। अपने लोग तो अपने ही बल, अपनी बुद्धि, अपने पुरुषार्थ, अपने उद्योग के भरोसे ही चले थे कि हम लोग ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। आज इन लोगों को पता चल गया कि हम लोग बड़े उत्साही हैं और हम लोग जब इतना बड़ा भारी बंदरों का संगठन प्राप्त कर सके, अब ये बंदर समुदाय जब लंका में जाएगा तो राक्षसों की क्या दशा होगी, ये बात वो अंदर से जान चुके हैं। इसलिए उन लोगों ने अपने सेना का नाश करने के लिए एक बड़ा अच्छा उपाय ढूंढा कि हे राम, मैं रावण का भाई विभीषण आपकी शरण में आया हूं। दूसरी बात यह भी है कि किसी व्यक्ति का त्याग भी नहीं होना चाहिए। उस आदमी से क्या लाभ है, क्या नुकसान है, इन दोनों बातों का ठीक अध्ययन होना चाहिए। यदि उस व्यक्ति से हमको लाभ तो बहुत कम है और नुकसान ज्यादा है तो उसे हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। और जिससे नुकसान हमारा कुछ भी नहीं है और लाभ ही लाभ है उसको हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। इसलिए बहुत गहराई का विषय महाराज, पहले विश्वास करो, इस पर विश्वास करो, पहले इस पर विश्वास मत करो, पहले इस बात की परीक्षा करो कि इसके रखने में हमको क्या लाभ होगा, न रखने में हमको कौन सी हानि होगी। लाभ तो मेरी दृष्टि से कोई समझ में आ नहीं रहा है, क्योंकि अपने लोग ये विचार करके चलेंगे कि अपने को तो अपने हिसाब से चलना है, इनसे हमको नया लाभ क्या मिलेगा। मेरा तो ये बात है, अच्छी बात। शरब नाम के जो बंदर थे वे खड़े होकर कहने लगे कि महाराज ऐसा करो कि इसके पीछे गुप्तचर लगा दो, गुप्तचर लगा और वो परीक्षा करे, परीक्षा करे, जब अपने समझ में आ जाए तब तो ठीक है, और समझ में न आए तो महाराज अपने को रखना ठीक नहीं लगता। जामवंत जी महाराज ने शास्त्र बुद्धि से ठीक ढंग से परीक्षा करके और फिर कहा कि महाराज मेरे मन में तो कुछ और ही बात आती है कि जिस राक्षसेंद्र रावण से हमारा बैर विरोध हो गया है और जिसने हमारे साथ पाप किया है। देखो, एक तो बैर विरोध होना और एक पाप होना, उसने पाप मूलक बैर विरोध किया है। तो जो बैर रखने वाला और पाप करके बैर विरोध करने वाला विभीषण है, रावण है, उसका छोटा भाई विभीषण यहाँ यहाँ कैसे आया मैं? आदेश काल है, न तो ये देश उपयुक्त है और न ये समय उपयुक्त है, ये यहाँ पर क्यों आया है कुछ समझ में नहीं आया। सर्वथा शंकितामयम, इसकी तो पूर्ण रूप से शंका करनी चाहिए। महाराज मेरी दृष्टि में तो ये शरण में लेने योग्य नहीं है। मैं थे बड़े बड़े धीमा, नीति अनीति को जानने वाले थे, उन्होंने बड़े हेतु के साथ कहा कि महाराज इस विभीषण को यहां आने दीजिए और आकर के बड़े प्रेम से आप बोलिए कि विभीषण तुम सत्य बात बताओ, तुम रावण के यहां से क्यों आए। आप उसकी वाणी को देखिए और वो क्या बोलता है उस बात को सुनिए, उसके भाव यदि आपको कहीं भी अदुष्ट लगे तो आप उसको वापस भेज दीजिए, नहीं भाई तुम चले जाओ यहां से, हम तुमको नहीं रख पाएंगे, और यदि आपको अच्छा लगे तो आप उसको रख लीजिए। सबके कहने के बाद अब भाई वायुपुत्र हनुमान जी का नंबर आया। हनुमान जी महाराज कहने लगे, बड़े सुंदर शब्दों में बड़ी अच्छी बात कहने लगे, कहने लगे हे महाराज आप बुद्धि में बड़े श्रेष्ठ हैं, आप सबको बुद्धि प्रदान करने वाले हैं, चार आचर प्राणियों में जितने सद विचार है वो आपकी कृपा से पैदा होते हैं, आप वक्ताओं में सबसे श्रेष्ठ, बुद्धिमानों में सबसे श्रेष्ठ हैं, मेरी दृष्टि में बृहस्पति का अतिक्रमण करने वाले हैं तो आप हैं, मैं आपके सामने ज्यादा क्या कह सकता हूं। मेरे मन में कुछ बात है जिन बात को मैं कोई विवाद के अंदर ले जाकर नहीं कहना चाहता, मैं कोई उसके ऊपर संघर्ष नहीं करना चाहता, मैं उस पर कोई अधिक तर्क वितर्क भी नहीं करना चाहता, उस बात को मैं कोई मेरे मन के दुराग्रह से भी नहीं कहना चाहता, बात पकड़ ली सो पकड़ ली ऐसी बात भी नहीं है। मैं हे राम वो बात कहना चाहता हूं जो तो यथार्थ भी हो और जिससे आपका गौरव भी बढ़े। आपके मंत्रियों ने ये बात कही कि किसी भी विषय को आप अर्थ और अनर्थ के द्वारा ठीक ढंग से विचार करके देखना चाहिए, तो इस दृष्टि से देखा जाए तो मुझे विभीषण को स्वीकार करने में कोई दोष मालूम नहीं दे रहा है। विभीषण को स्वीकार करेंगे कोई दोष नहीं है, कोई इसमें मुझे गलती मालूम नहीं दे रही है। और सबसे बड़ी बात है तो एक ही बात बता रहे हैं लोग कि ये हमारी सेना में आ जाएगा और आकर के और ये जो है हमारी सेना में या तो फूट डला देगा और या हम में से किसी को मार देगा। यही बात कहने वाले हैं। तो महाराज ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप विचार कीजिए कि जो व्यक्ति पाप के द्वारा मारना चाहेगा और हम लोग इतने सन्नत रह करके रहते हैं, वो कैसे मारे? वो स्वयं भी तो इतने बांदरों के बीच में बैठा हुआ है, वो ऐसा कर कैसे देगा? इतने बांदरों के बीच में बैठा हुआ इतना बड़ा दुस्साहस कैसे करेगा? क्योंकि इसका प्रतिफल इसको मालूम है। सहसा किसी पर इस प्रकार से अविश्वास करना ये हमारे लिए एक दोष की बात होगी। और आपके मंत्रियों ने कहा कि शायद ये रावण का गुप्तचर है, रावण का गुप्तचर होने से यहाँ आया है। तो महाराज ये बात भी मुझे कम मालूम रहती है, कारण कि रावण का गुप्तचर हो और वो आपको आकर के कहे कि मैं रावण का भाई हूँ और मैं रावण को छोड़ करके आपके पास आया हूँ, ऐसा नहीं बोलते हैं। गुप्तचर होते हैं, उनका नाम ही गुप्तचर है, वो चुपचाप आकर के आपको देखते हैं चले जाते हैं। गुप्तचर कभी भी अपना निशंक परिचय नहीं देते, इसलिए रावण की गुप्तचरी करने के लिए आया है ऐसा विश्वास करना ठीक नहीं है। और जैसे जामवन जी ने कहा कि किसी देश और काल को छोड़कर के उचित देश में नहीं आया, उचित काल में नहीं आया, ये बात भी हमारे नहीं दसती है, बल्कि देखा जाए तो यही देश और यही काल इसके लिए बड़ा अच्छा है। रावण के पाप पूर्ण निर्णय को विभीषण ने कभी ही रावण को कह दिया होगा, लेकिन वो रावण को छोड़ करके आखिर जावे तो कहां? स्वयं कैसे रावण को छोड़ सकता है? बड़े पुरुष होते हैं, वो स्वयं किसी को नहीं छोड़ते, उनको कोई छोड़ दे तो छोड़ देते हैं। अंगीकृतम सुकृतिनः परिपालयन्ति, जो बड़े पुरुष होते हैं वो जिसको स्वीकार कर लेते हैं उसका अंत तक निर्वाह करने का प्रयत्न करते हैं। तो विभीषण जी ने देखा कि रावण ने पाप किया है, लेकिन मैं पापी व्यक्ति को मैं कैसे छोड़ूं? ये मुझे छोड़े और मैं यदि इसको छोड़ूं तो कहां जाऊं और किसके पास जाऊं? क्योंकि जो व्यक्ति जिसको छोड़ता है तो छोड़ने के बाद वो उसके पास जाना चाहेगा कि जिसको छोड़ रहा है उससे श्रेष्ठ कोई मिले। तो जब तक आपके विषय में विभीषण को कुछ ज्ञान नहीं था, तब तक विभीषण की दृष्टि में संसार में सबसे श्रेष्ठ रावण ही तो था, चाहे वो कुल की दृष्टि से देख लो, परिवार की दृष्टि से देख लो, चाहे विद्या बुद्धि की दृष्टि से देख लो, चाहे भुजबल की दृष्टि से देख लो, किसी भी दृष्टि से देख लो, रावण उसको श्रेष्ठ मालूम देता था। लेकिन जो आपकी महिमा प्रकट होने लगी और जो जो आपका पराक्रम ये सुनने लगा, त्यों इसके मन में आपके प्रति भावना जागृत हुई। और रावण ने जब इसका त्याग कर दिया, त्याग करने के बाद ये आ गया। अतः अज्ञात रूपे पुरुषै सह राजन पृच्छतामिति, इसलिए ये समय सही है। और ये भी कहते हैं कि साहब इसको जाकर पूछो कि तुम वास्तव में गुप्तचरी करने के लिए आए हो क्या? ऐसी बात पूछना भी एक तरह से हमारी बुद्धिहीनता कहलाएगी। गुप्तचरों को ऐसा पूछा नहीं जाता कि तुम जो है गुप्तचरी करने के लिए आए हो क्या? और गुप्तचर के पीछे गुप्तचर रखा जाए बात तो ठीक है, लेकिन आप पहले उसको समझो तो सही कि गुप्तचर है कि नहीं। गुप्तचर का निर्णय हो जाए कि गुप्तचर है तो उसके पीछे गुप्तचर रखो। और यदि आप इसको पूरी बात पूछेंगे कि साहब तुम्हारे मन की बात बताओ, तो देखो मन की बात यूं भी नहीं बताएगा और आपकी बात और हल्की पड़ेगी। देखो हमको ये इतना हम तो छोड़ के आए फिर भी हमको पूछते हैं। पृच्छ मानो विसंकेत है, पूछोगे तो उसके मन में शंका ज्यादा होगी और इसके मन में जो एक मित्र हृदय बनने की भावना आ रही उस पर धक्का लगेगा, फिर आपका मित्र कैसे होगा? क्योंकि ये कोई इतना इस प्रकार से गिरा हुआ आदमी तो हो नहीं सकता। आखिर रावण का भाई ये कोई बिल्कुल गिरा हुआ है नहीं, कोई आपके यहाँ आने से, आपके यहाँ आने से इतना संदेह के वातावरण में ये रहे, ये भी ये नहीं चाहेगा। एक बात हमारा, किसी आदमी को यदि परीक्षा करनी हो तो वो आदमी किन बातों को किस प्रकार से प्रकट करता है उसके चेहरे के भाव से पता चल जाता है। वो व्यक्ति जिन स्वरों से बोलता है उसकी वाणी से पता चल जाता है, उसकी चेष्टाओं से पता चल जाता है, उसके उत्तरों से पता चल जाता है, उसकी बुद्धि निपुणता से पता चल जाता है। इसलिए महाराज आप देखते हो, आप उससे बात करो तो आप उसकी आंख को देखो, चेहरे को देखो, चेहरे पर प्रसन्नता है या चेहरे पर क्या है। जो आदमी परीक्षा की दृष्टि से किसी से बात करेगा उसको स्वतः ही पता चल जाएगा, मेरे विचार से उसका चेहरा प्रसन्नता से खिला है, मेरे विचार से उसके मन में कोई शंका नहीं है, वो सठ नहीं है, वो स्वस्थ है और उसकी वाणी में कोई दुष्टता नहीं है। हे महाराज, मैं भी तो आपके पास आया था, मैंने आपकी परीक्षा ली थी, उस समय आपकी दृष्टि तो मेरे ऊपर ही थी ना, आप मेरे चेहरे को देख रहे थे, आंख को देख रहे थे, मेरे निकलने वाले शब्दों को देख रहे थे, और हे महाराज मैंने भी तो आपकी परीक्षा ली थी। तो महाराज ऐसे ही अपने को चाहिए कि मित्र संग्रह करें और मित्र संग्रह करके और विचार करें। आकारश छाद्य मानोपि, देखो चेहरे से तो कोई आदमी मान लो थोड़ा बहुत अपने को छिपा भी देगा, लेकिन वास्तव में उसके अंदर के भाव छिपे हुए रह नहीं सकते, कायदा नहीं है। तो मेरे विचार से तो महाराज इसने रावण को खूब समझाया होगा और इसने विचार मन में कर लिया होगा कि ज्यादा से ज्यादा रावण मुझे मारेगा तो मरने के लिए तैयार हूं, और यदि मुझे रावण यहां से निकालेगा तो निकल करके मैं राम के पास जाने के लिए भी तैयार हूं, क्योंकि उसने आपका पराक्रम सुन लिया है। इसने सुना है कि बाली को एक बाण से मारने वाले राम है, इसने सुना है कि विराट को मारने वाले राम है, कबंद को मारने वाले राम है, खर और दूषण को मारने वाले राम है, इन सब बातों को खूब अच्छी तरह से इसने देख लिया है। इसलिए सब ठीक ढंग से परीक्षा करके फिर आपके पास आया है। एतावत् पुरस्कृत्य युज्यते तस्य संग्रहः। महाराज मैं मेरे मन की बात कहता हूँ, आप अपने शिविर से बाहर आइए, और बाहर आकर के आप स्वयं यहाँ खड़े होइए और विभीषण से विभीषण की ओर देखिए। विभीषण यदि आपके पास आना चाहता तो आप इशारा करके नीचे उतरने के लिए आप उसको आज्ञा दीजिए। यथा शक्ति मयोक्तम, जैसी मेरी शक्ति थी वैसा मैंने कहा है, लेकिन आगे आपको क्या करना है ये आप जानो और आपके सब बुद्धिमान लोग जाने। राम जी महाराज हनुमान जी की बात को सुनकर के बड़े प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होकर के और राम जी महाराज कहने लगे, वाह मेरे मन की सारी बातें तुमने कह दी, मैं श्रोतुम इच्छामि तत् सर्वं भवद्भि श्रेयसि स्थितये, तुमने जो कहा वो मुझे बहुत अच्छा लगा, और देखो मित्र भावम संप्राप्तम न त्यजेयम कथंचन, मैं उसको मित्र बनाना चाहता हूँ लेकिन किसी प्रकार से उसका त्याग नहीं करना चाहता। यह सत्पुरुषों का ही लक्षण है हनुमान, सत्पुरुष व्यक्ति अपना लाभ और नुकसान नहीं देखते, सत्पुरुष व्यक्ति अपने पास में आए हुए का त्याग नहीं करते हैं। दोषे स्याद् यद्यपि, यद्यपि कोई हमको नुकसान भी हो तो भी अपने पास आए हुए को ये सत्पुरुष अपने मुंह से कह नहीं सकते कि तुम चले जाओ यहाँ से बिना कोई अपराध किए। एक आदमी मित्रता से हमारी ओर आ रहा है और हम उसको कह दें कि नहीं हमसे कोई मित्रता की जरूरत नहीं है, तो ये अच्छी बात नहीं है, ये सत्पुरुष उसका उसको अच्छा नहीं मानते। सुग्रीव जी ने कहा कि महाराज देखो वो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो चाहे कैसा ही हो, परंतु हम लोग जिसके ऊपर चढ़ाई करने जा रहे हैं उसी का ही भाई हमारी शरण में आता है, उसके त्याग में कोई दोष नहीं लग रहा है। लक्ष्मण जी की ओर देखते हुए राम जी ने कहा कि देख लक्ष्मण, राजा हो तो ऐसा हो, जिसने राजनीति के शास्त्र का अध्ययन नहीं किया है, जिसने बड़े बूढ़ों की सेवा नहीं की है, वो आदमी ऐसे वचन बोल नहीं सकता है। इसने बड़े बूढ़ों की सेवा की है, सुग्रीव ने राजनीति शास्त्र का अध्ययन किया है, अतः उसने बिल्कुल उचित बात कही है। परंतु महाराज सुग्रीव, एक बड़ी सूक्ष्म बात है जो बाहर से नहीं दिखा करती है, यथार्थ प्रतिभातिमा जो मुझे बहुत गहराई से देखने पर प्रतीत हो रही है। देखो इस संसार के अंदर आपस में जो बैर विरोध होता है वो किनका होता है? सारा बैर विरोध कुल में है, एक ही जाति में है, और उन्हीं के अंदर विरोध होना ये बहुत सामान्य बात है। अमित्रास्तत कुलीनाश्च प्रादिदेशाश्च कीर्तिता। अरे अमित्र कौन है कि तत्कुलीना, उस कुल में रहने वाले लोग ही हमारे अमित्र है, एक ही कुल के वाले। ब्राह्मण के लिए सबसे ज्यादा दुखदायी ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय के लिए सबसे ज्यादा दुखदायी क्षत्रिय होगा, वैश्य के लिए वैश्य होगा, शूद्र के लिए शूद्र होगा। ये आम बात है, आप देख सकते हो। एक ब्राह्मण जहाँ यज्ञ आदि करवाता है पूजा पाठ का, दूसरा ब्राह्मण को अच्छा नहीं लगेगा, क्षत्रिय क्षत्रिय को अच्छा नहीं लगेगा, वैश्य है वो व्यापार करता है, व्यापार व्यापार में बड़ी कंपटीशन चलती है। तो भाई ये सब आपस में अमित्रास्तस्त कुलीनाश है। और भाई और पड़ोसी होता है, पड़ोसी होते हैं वो उसके विषय में नाराज रहने वाले ज्यादा होते हैं। तो शत्रु होते हैं वो कुलीन होते हैं, और जो है प्रातिदेशाश्च कीर्तिता, और पड़ोसी लोग होते हैं वो ज्यादा उनके निंदक या दूसरी बात बोलने वाले होते हैं। ये सब संसार में कष्ट पैदा करने वाले होते हैं। और अपापास्तत कुलीनाश्च मानवयन्ति स्वकान हिता। और जो धर्मात्मा पुरुष होते हैं उनको ये पापी लोग ज्यादा सताते रहते हैं, उसी कुल में रहने वाले लोग ज्यादा सताते रहते हैं। तो विभीषण ने रावण को बहुत कुछ बात कही होगी, परंतु रावण इस विषय को समझा नहीं होगा और कह करके रावण पाप पर दृढ़ रहा होगा और ये छोड़ करके हमारे पास आया। अच्छा अब हमारे पास क्यों आया ये सुग्रीव, हमारे पास क्यों आया? क्योंकि रावण तो उसके कुल का इसलिए विरोध है, हमारा भी इसका तो कोई कुल भी नहीं, इसलिए विरोध नहीं हो सकता हमसे। और हमारा अनिष्ट क्यों करेगा ये? क्योंकि हमारी कोई शत्रुता हो तब ना अनिष्ट हो, शत्रु हमारा ये कुल वाला ही शत्रु होता है तो हम इसके कुल वाले नहीं। और इसके मन में राज्य की भी इच्छा है तो कौन से राज्य की इच्छा है? अयोध्या के राज्य की इच्छा नहीं, लंका के राज्य की इच्छा है, और हमारा ये लंका है नहीं, हमें तो ये लंका का राज्य करना नहीं। इसलिए रावण से जो नाराजगी हुई है एक कुल में इसलिए नाराजगी हुई, रावण से नाराजगी इसलिए हुई है कि रावण से ये राज्य लेना चाहता है। इसलिए विभीषण जी महाराज की नाराजगी सही है। राक्षसों के अंदर भी बड़े बड़े पंडित और विद्वान पुरुष होते हैं, मेरे विचार से इनको स्वीकार कर ले। दूसरी बात यह है कि ये कोई व्यग्र नहीं है, कोई घबराए हुए नहीं है, बड़े हर्ष के साथ ये बोल रहे हैं, और इनका जो बोलने का तरीका है वो वास्तव में बड़ा अच्छा है, इसलिए वो भय से रहित होने के लिए अपने पास आए। देखो देखो सुग्रीव, एक बात कहूं कि सारे संसार में जो भाई होते हैं वो भरत के समान नहीं होते हैं। ये देखो खास बात कही राम जी ने, न सर्वे भ्रातरस्तात भवन्ति भरतोपमा। भरत जैसे भाई नहीं होते भाई, कि जिनको राज्य की इच्छा नहीं है, पिता ने कह दिया, माँ ने कह दिया, गुरुजनों ने कह दिया, सब ने कह दिया कि लो भाई तुम राज्य लो, कि ना बाबा मेरा राज्य नहीं है। भरत जैसे तो भाई नहीं होते, और मेरे जैसे पिता की बात रखने वाले नहीं होते, और तुम्हारे जैसे मित्र नहीं होते, तुम्हारे जैसे मित्र नहीं होते। हनुमान जी महाराज नहीं है, सुग्रीव जी महाराज ने बात सुनी और सुनकर के कहा कि महाराज आप कहते हो कि रावण के इसकी कोई न कोई बात पर खटपट हुई है तब आया है। महाराज ये रावण का भाई है, रावण के लाभ पहुंचाने के लिए हमको नुकसान में डालने के लिए भी तो आ सकता है, इसका कोई आपने बात नहीं कही है। ये कभी भी आप पर प्रहार कर सकता है, मुझ पर प्रहार कर सकता है, लक्ष्मण पर प्रहार कर सकता है। हनुमान जी बोलते हैं कि स्वयं भी जानता है कि इनमें से किसी को मारकर हमको, अरे ज्यादा आप मार देंगे इनको, ज्यादा से ज्यादा विभीषण को ये तो डर है कि यदि हमने किसी को मार दिया तो हमको ये मार देंगे तो मर जाएगा, परंतु आपको यदि मार देगा, मुझे मार देगा, लक्ष्मण को मार देगा, फिर मतलब क्या निकला, अपने सीता की प्राप्ति का मतलब क्या निकला। मेरे विचार से जरूर इसके मन में कोई न कोई कपट है। जब सुग्रीव ने ये बात कही तो राम जी महाराज फिर कहने लगे, देखो सुग्रीव, चाहे दुष्ट हो चाहे अदुष्ट हो, लेकिन इसके द्वारा हमें सूक्ष्म अहित नहीं दिखाई देता है, क्योंकि हमारे सामने दो प्रकार का युद्ध है, एक बाह्य युद्ध है और एक अंतर युद्ध है। अंतर युद्ध धर्म का चल रहा है। हम लोग जब से अयोध्या से चले हैं, नहीं जब से हमने अयोध्या में जन्म लिया है तब से हम धर्म के साथ होते होते चले आए हैं। धर्म हमको बोलता है कि भाई कोई किसी प्रकार से अपने पास में आए हुए का त्याग मत करो, शरणागत का त्याग मत करो। सुग्रीव, आप ये समझते हो कि ये विभीषण वगैरह मुझे मार देंगे, ऐसा समझते हो? क्या समझते हो तुम? एक बाण संसार मात्र के पिशाचों को, दानवों को, यक्षों को, पृथ्वी पर रहने वाले राक्षसों को, सबको ये मार करके आ सकता है, मुझे ये मार देगा, ऐसा तुमने कैसे सोच लिया? और सुग्रीव याद करो एक कहानी को। एक वृक्ष के ऊपर एक कबूतर था, तो कबूतर जो है वो दाना लेने के लिए कहीं जंगल में गया था। पीछे एक शिकारी आया, शिकारी ने कबूतरी को मार दिया। मारने के बाद उसको उसने वहां नीचे आग पर पकाया। इतने में कबूतर आ गया। कबूतर ने देखा कि मेरी पत्नी को इसने मार करके आग में जलाया है, तो उसके मन में आया कि इससे इसका पेट तो नहीं भरेगा। उसने उसको जला करके, उसको सेक करके उसका मांस खाया, लेकिन वो भूखा है। उसी समय में उसी आग के अंदर कबूतर खुद आकर के उसमें जल गया और कहने लगा कि शिकारी, मैं अब तुम मेरे पेड़ के नीचे आ गए और भूखे सोओगे, मैं तुमको भूखा नहीं सोने दूंगा। वो कबूतर आकर के आग में जल करके राख हो गया और मांस उसको दे दिया, उसने लो खा लो मेरे। क्या मैं कबूतर जैसा भी नहीं हूं? अपने शरण में आए हुए को इस प्रकार से मैं कह दूं कि तुम से मेरा नुकसान, तुम चले जाओ? कर्ण ऋषि ने एक बहुत अच्छी बात पहले कही थी कि जो व्यक्ति हमारे सामने हाथ जोड़कर कहा है हमारे शरणागत हो जाए, उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार से किसी भी नुकसान की आशा से त्याग नहीं करना चाहिए। यदि वो व्यक्ति हमारे सामने आया आर्त होकर कहा कि मैं आपके शरण में हूं, मुझे बचाओ मुझे बचाओ, और यदि हमने उसको नहीं बचाया और वो मर गया, उसके सारे पाप उसको भोगने पड़ेंगे जिसके वो शरण में आया है। आज भी विभीषण मरता है, इसने जीवन में कोई भी पाप किया, वो पाप का फल राम को भोगना पड़ेगा। क्या तुम राम को पापी बनाना चाहते हो? विनिष्ठा पश्यतस्तस्य रक्षिणः शरणं गतः। इसलिए मुझे बात अच्छी नहीं लगी, मुझे तो यही अच्छा लगता है कि ऋषि मुनियों का वचन है और हमारे पास शरणागतों के पक्षियों के द्वारा भी रक्षा होती है, ऐसा उदाहरण पड़ा है। अच्छा एक बात और है सुग्रीव, लोग मुझसे तो धर्म की आशा करते हैं। जिसके पास धर्म होता है उसी का यश होता है, मेरे से भी धर्म की आशा करते हैं और मैं ऐसा अधर्म करूं अच्छा लगेगा? सुग्रीव, मेरी एक प्रतिज्ञा है, ध्यान से सुनना, आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए। क्या? सकृदेवा प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतत् व्रतं मम। जो व्यक्ति एक बार मेरी शरण में आ जाए कि मैं आपका हूं, हे नाथ मैं आपका हूं, बस, तो उसके बाद उसको सर्वथा अभय प्रदान करना, ये मेरा व्रत है, मेरी प्रतिज्ञा है। बेचारा विभीषण, चार आचार्य, इतने प्राणी, देव, गंधर्व, किन्नर, उरग, कितने कितने प्राणी हैं, रावण से कितने कितने लोग विरोधी हैं, हम ही विरोधी थोड़े और भी तो विरोधी हैं। ये विभीषण किसी के पास नहीं गया, सीधा मेरे पास आया है। और मेरा जो व्रत है कि मैं अपने शरणागत का त्याग नहीं कर सकता, तो नहीं कर सकता, इसलिए विभीषण, इसलिए सुग्रीव विभीषण को यहां